एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने वाकई अमेरिका को आप कह सकते हैं हिलाकर रख दिया था, कॉल्सन व्हाइटहेड का उपन्यास दी अंडरग्राउंड रेल रोड। ये किताब 2016 में आई और आते ही मतलब छा गई।
बिल्कुल, और कोल्सन व्हाइटहेड भी कोई मामूली लेखक नहीं है। आज के अमेरिका के सबसे ज़रूरी राइटर माने जाते हैं। 2 बार पुलित्ज़र प्राइज जीत चुकी हैं। उनकी खासियत है कि वो इतिहास, थोड़ी कल्पना जिसे मैजिकल रियलिज्म कहते हैं, और समाज पर तीखी टिप्पणी, इन सबको बड़ी खूबसूरती से मिला देती हैं।
हाँ, और दी अंडरग्राउंड रेल रोड में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। इसे पुलित्ज़र मिला, नेशनल बुक अवार्ड मिला, यहाँ तक कि साइंस फिक्शन वाला आर्थर सी क्लार्क अवार्ड भी।
हाँ, सोचिए जरा।
और सोचिए, ये किताब उस वक्त आई जब अमेरिका में नस्लवाद और इतिहास को लेकर बड़ी बहस चल रही थी। इसने जैसे क्या कहते हैं, दुखती रग पर हाथ रख दिया।
सही कहा। इसे अक्सर टोनी मॉरिसन की बिलवेड या ऑक्टेविया बटलर की किंड्रेड जैसी बड़ी किताबों के साथ रखा जाता है, पर इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है।
बिल्कुल
सही कहा। तो आज हम इसी किताब की दुनिया में गहरे उतरेंगे। इसकी कहानी क्या है, कौन है इसकी मुख्य किरदार, वो किन मुश्किलों से गुजरते हैं, और व्हाइटहेड ने इसे इतनी खास कैसे बनाया, इन्हीं सब पर बात करेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के माहौल से। ये हमें ले जाती है अमेरिका के उस दौर में जब गृह युद्ध शुरू नहीं हुआ था, जिसे एंटेबेलम साउथ कहते हैं, खास तौर पर जॉर्जिया का एक रॉन्डेल नाम का कपास का बागान। उस जमाने में दक्षिण के इन बागानों में गुलामी की जकड़ बहुत मजबूत थी।
और ये जकड़ सिर्फ शारीरिक नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माहौल ही ऐसा था जहां इंसानों को सामान समझा जाता था, खरीदा बेचा जाता था, उन पर जुल्म होते थे, उनकी इंसानियत को मतलब रौंदा जाता था। रैंडल बागान इसी क्रूरता और अमानवीयता का एक जीता जागता नमूना है।
बिल्कुल, लेकिन व्हाइटहेड यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लाते हैं। इतिहास में अंडरग्राउंड रेलरोड गुलामों को उत्तर की आज़ाद दुनिया में भागने में मदद करने वाले गुप्त रास्तों और सुरक्षित ठिकानों का एक नेटवर्क था, पर व्हाइटहेड इसे सिर्फ एक नेटवर्क नहीं बल्कि एक असली ज़मीन के नीचे चलने वाली रेलगाड़ी बना देते हैं, जिसमें इंजन है, कंडक्टर हैं, स्टेशन हैं।
हाँ,
ये सुनने में थोड़ा जादू ही लगता है, पर यह कल्पना का पुट कहानी को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है।
हाँ, ये मैजिकल रियलिज्म का इस्तेमाल कमाल का है। ये रेल रोड सिर्फ भागने का जरिया नहीं, बल्कि आज़ादी की उम्मीद, उसके खतरों और उस सफर की अनिश्चितता का एक जबरदस्त प्रतीक बन जाता है ना?
बिल्कुल, और इस सफर के बिल्कुल बीच में है कोरा, इस कहानी की नायिका। चलिए जरा कोरा से मिलते हैं। जब कहानी शुरू होती है, रैंडल बागान में उसकी जिंदगी कैसी है?
कोरा बागान में काफ़ी अकेली और क्या कहूँ, अलग थलग है। उसकी माँ माबेल कई साल पहले बागान से भाग गई थी और कोरा को वहीं छोड़ गई थी। इस बात ने कोरा को अंदर से बहुत सख्त बना दिया है। वो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती। उसकी दादी अजारी ने उसके लिए ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ा था जिस पर वो सब्जियां उगाती है। ये छोटी सी ज़मीन ही जैसे उसकी अपनी पहचान और आत्मसम्मान का इकलौता सबूत है।
मतलब शुरुआत में वो काफ़ी बिखरी हुई और अकेली है, लेकिन उसकी कहानी आगे चलकर हिम्मत, जिंदा रहने की ज़िद और एक बड़े बदलाव की कहानी बनती है ना?
बिल्कुल, और इस बदलाव की चिंगारी लगाता है सीज़र नाम का एक दूसरा गुलाम। सीज़र वर्जीनिया से लाया गया था। वो पढ़ना लिखना जानता था और उसके दिल में आज़ादी की एक लौ जल रही थी। वही कोरा के पास भागने का प्लान लेकर आता है। वो कोरा को यकीन दिलाता है कि उत्तर में एक बेहतर ज़िंदगी मुमकिन है। सीज़र की उम्मीद कोरा के शुरुआती निराशावाद से बिल्कुल उलट है।
तो सीज़र एक तरह से उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का काम करता है, लेकिन जहाँ उम्मीद होती है वहाँ खतरा भी तो होता है, और इस कहानी में खतरे का सबसे बड़ा चेहरा कौन है?
वो है अर्नोल्ड रिजवे, एक बदनाम स्लेव कैचर यानी भागे हुए गुलामों को पकड़ने वाला। लेकिन व्हाइटहेड ने उसे सिर्फ एक विलेन बनाकर नहीं छोड़ा है। रिजवे एक बिगड़ी हुई अमेरिकन सोच का प्रतीक है जिसे वो ग्रेट अमेरिकन स्पिरिट कहता है। वो मानता है कि गोरे लोगों का हक है ज़मीन पर कब्जा करना, मूल निवासियों को मारना और कालों को गुलाम बनाना। उसके लिए गुलामी कोई पाप नहीं बल्कि दुनिया का निज़ाम है।
और उसका कोरा के पीछे पड़ना सिर्फ नौकरी का हिस्सा नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही पर्सनल लगता है ना?
हाँ, क्योंकि वो कोरा की माँ मेबल को पकड़ने में नाकाम रहा था और ये उसकी ज़िंदगी की इकलौती हार थी, तो कोरा को पकड़ना उसके लिए जुनून बन जाता है।
अच्छा,
और एक और बात जो रिजवे को और जटिल बनाती है वो है होमर नाम का छोटा अश्वेत लड़का जो हमेशा उसके साथ रहता है। रिज़वे ने उसे आज़ाद करके एक तरह से बंधुआ बना रखा है। होमर दिखाता है कि कैसे ये जालिम व्यवस्था अपने शिकारों को भी अपने साथ मिला लेती है, उन्हें भ्रष्ट कर देती है।
उफ़, ये तो वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, कोरा की यात्रा में कुछ और अहम किरदार भी मिलते हैं।
हाँ, आगे चलकर इंडियाना में उसकी मुलाकात रॉयल से होती है। रॉयल एक आज़ाद अश्वेत है, पढ़ा लिखा, समझदार और अंडरग्राउंड रेलरोड का एक ज़रूरी हिस्सा। वो कोरा के लिए एक ऐसे भविष्य की उम्मीद जगाता है जिसके बारे में कोरा ने कभी सोचा भी नहीं था। प्यार, अपनापन, सुरक्षा। रॉयल अश्वेत लोगों के अपने दम पर खड़े होने का प्रतीक है। और फिर है मार्बल, कोरा की माँ। वो कहानी में मौजूद नहीं है, पर उसकी गैर मौजूदगी भी बहुत मायने रखती है। उसके भागने की कहानी बागान में एक किंवदंती बन चुकी है, जो कोरा को हिम्मत भी देती है और गुस्सा भी दिलाती है। उसका क्या हुआ, ये राज कहानी के आखिर तक बना रहता है।
तो किरदारों को ये ताना बाना तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। अब जरा कोरा के सफर पर चलते हैं। जॉर्जिया से भागने का फैसला वो कैसे लेती है?
जॉर्जिया के रैंडल बागान में जिंदगी बहुत बेरहम है। सीजर भागने का प्लान लाता है, लेकिन कोरा हिचक रही होती है। फिर एक घटना होती है। बागान का मालिक टेरेंस रैंडल एक छोटे लड़के को बुरी तरह पीट रहा होता है। कोरा उसे बचाने की कोशिश करती है और खुद मालिक के गुस्से का शिकार बन जाती है। अब उसके पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। वो, सीजर और उनकी एक दोस्त लवी रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं।
लेकिन खतरा तो फौरन,
हाँ, फौरन सामने आ जाता है। गुलामों को पकड़ने वाले गश्ती दल उन पर हमला कर देते हैं। लवी पकड़ी जाती है। बाद में उसे बेरहमी से मारकर सरेआम लटका दिया जाता है ताकि दूसरे गुलाम डर जाएं।
यानी भागने का मतलब सिर्फ आजादी नहीं, मौत का सीधा सामना भी है।
बिल्कुल। कोरा और सीजर किसी तरह बच निकलते हैं और पहले अंडरग्राउंड रेलरोड स्टेशन तक पहुंचते हैं। ये एक हमदर्द किसान के घर के नीचे बना एक असली स्टेशन है, जहां से ट्रेन उन्हें आगे ले जाएगी। लेकिन भागते वक्त अंधेरे में कुछ लड़के उन पर हमला करते हैं और कोरा अपनी जान बचाने के लिए उनमें से एक गोरे लड़के को मार देती है।
ओह,
अब वो सिर्फ एक भगोड़ी गुलाम नहीं, एक कातिल भी है। उस पर इनाम और बढ़ जाता है।
तो शुरुआती इतनी खतरनाक है। उस लड़की की मौत का साया तो कोरा पर हमेशा मंडराता रहता होगा। ये रेलरोड उम्मीद तो है, पर ये रास्ता कितना जानलेवा है, ये पहले कदम पर ही साफ हो जाता है। ये सिर्फ भागने की नहीं, जिंदा रहने की जद्दोजहद की कहानी है।
हाँ, और उनका पहला पड़ाव आता है साउथ कैरोलिना। पहली नज़र में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। कोरा को रहने के लिए साफ़ सुथरा कमरा मिलता है, नए कपड़े, यहाँ तक कि एक म्यूजियम में नौकरी भी मिल जाती है, जहाँ उसे गुलामी के दिनों के सीन करने पड़ते हैं।
सरकार पूर्व गुलामों की भलाई के लिए शिक्षा और इलाज का इंतजाम करती दिखती है।
सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है।
फिर गड़बड़ कहाँ होती है?
गड़बड़ ये है कि ये सब भलाई एक दिखावा है। कोरा को धीरे धीरे पता चलता है कि ये प्रगति एक भयानक साजिश का हिस्सा है।
म्यूजियम गुलामी की बयाबता को घोरे दर्शकों के मनोरंजन में बदल देता है।
अच्छा, और जो मुफ्त इलाज मिल रहा है वो असल में अश्वेत औरतों की जबरदस्ती नसबंदी करने और अश्वेत मर्दों पर खतरनाक मेडिकल प्रयोग जैसे सिफिलिस का इलाज ढूंढने के नाम पे करने का एक बड़ा यूजेनिक्स प्रोग्राम है।
फिर?
मकसद है अश्वेत आबादी को कंट्रोल करना। ये असल जिंदगी के टस्कीगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट जैसे भयानक अत्याचारों की याद दिलाता है।
बापरे, मतलब दमन सिर्फ कोड़े बरसाना नहीं होता, ये प्रगति और विज्ञान का मुखौटा पहनकर भी आ सकता है।
बिल्कुल। जैसे ही उसे सच्चाई पता चलती है, वो रिज़वे के पहुंचने से पहले वहां से निकल भागती है। जैसा एक कंडक्टर कहता है, हर राज्य अलग है, हर राज्य संभावनाओं का राज्य है, अपने रीति रिवाजों और काम करने के तरीकों के साथ।
और अगली संभावना कहाँ ले जाती है कोरा को?
अगली मंजिल है नॉर्थ कैरोलिना, और यहाँ हालात शायद सबसे ज्यादा भयानक है। इस राज्य ने गुलामी खत्म करने का एक अजीब और क्रूर तरीका निकाला है। उन्होंने तय किया है कि वो अपनी पूरी अश्वेत आबादी को ही खत्म कर देंगे।
क्या?
हाँ, गोरे लोगों को खुली छूट है कि किसी भी अश्वेत इंसान को देखो और मार डालो। राज्य की मुख्य सड़क का नाम है फ्रीडम ट्रेल, लेकिन उस पर आजादी नहीं बल्कि पेड़ों से लटकती भगोड़े गुलामों और उनकी मदद करने वाले गोरे लोगों की लाशें मिलती हैं।
ये तो नरसंहार जैसा है। कोरा यहाँ कैसे बच पाती है?
उसे मार्टिन वेल्स नाम के एक स्टेशन एजेंट के घर की अटारी में छिपना पड़ता है। महीनों तक वो उस तंग अंधेरी जगह में कैद रहती है। ये उसके लिए भयानक मानसिक पीड़ा का दौर होता है। वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाती है। लेकिन आखिरकार मार्टिन और उसकी पत्नी एथेल पकड़े जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है और रिजवे कोरा को पकड़ ही लेता है।
नॉर्थ कैरोलिना तो नस्ली नफरत का चरम दिखाता है। यहाँ गुलामी खत्म करने का तर्क अश्वेत लोगों को ही खत्म करने तक पहुंच गया है। कोरा का अटारी में बंद रहना यह दिखाता है कि डर और कैद का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग पर कितना गहरा होता है। खतरा सिर्फ बगानों में नहीं, पूरे देश में फैला हुआ है।
रिजवे कोरा को पकड़कर वापस जॉर्जिया ले जा रहा होता है। रास्ते में वो टेनेसी से गुजरते हैं। ये इलाका आग और बीमारी से झुलसा हुआ वीरान सा है, जैसे अमरीका के पश्चिम की ओर फैलने की कहानी और नस्लीय हिंसा ने सब कुछ तबाह कर दिया हो। यहीं हमें रिजवे के बारे में और जानने को मिलता है। उसके पिता लोहार थे और थोड़े नरम दिल थे, लेकिन रिजवे ने उनके रास्ते को ठुकरा दिया और अपनी क्रूर अमेरिकन इम्पेरेटिव वाली सोच अपना ली।
ये अमेरिकन इम्पेरेटिव क्या है, थोड़ा और बताइए इसके बारे में।
ये वो सोच है कि गोरे अमेरिकियों का हक है जमीन छीनना, मूल निवासियों को खत्म करना और कालों को गुलाम बनाना। ये उनका अधिकार और नियति है। लेकिन टेनेसी का वो वीरान मंजर जैसे रिजवे की इस सोच के खोखलेपन को दिखाता है। असलियत तो हिंसा, तबाही और चोरी की है।
और यहीं कुछ होता है जो कहानी का रुख बदल देता है।
हाँ, यहीं पर रॉयल और अंडरग्राउंड रेल रोड के दूसरे साथी घात लगाकर हमला करते हैं। जबरदस्त गोलीबारी होती है, कोरा आजाद हो जाती है और रिजवे घायल हो जाता है।
तो कोरा फिर बच निकलती है, अब वो कहाँ जाती है?
रॉयल उसे इंडियाना में वैलेंटाइन फार्म ले जाता है। ये जगह एक सपना सच होने जैसी है। ये आज़ाद अश्वेतों और भगोड़े गुलामों की एक बस्ती है जो फल फूल रही है, जहाँ लोग खुद अपने फैसले लेते हैं। पहली बार कोरा को लगता है कि वो किसी समुदाय का हिस्सा है, उसकी जिंदगी का कोई मकसद है, वो सुरक्षित है।
अच्छा।
वो वहाँ काम करती है, बस्ती के भविष्य पर होने वाली बहसों में हिस्सा लेती है और उसे रॉयल से प्यार हो जाता है।
ये तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। क्या ये आखिरकार कोरा की मंजिल है?
काश काश ऐसा होता। वैलेंटाइन फार्म अश्वेत लोगों की अपनी दुनिया बनाने की कोशिश का प्रतीक है, लेकिन यह सपना बहुत नाजुक है। आसपास के गोरे लोग इस बस्ती को शक और नफरत से देखते हैं।
हाँ, ये तो होता ही है।
फार्म के अंदर भी बहस है। कुछ लोग शांति से रहना चाहते हैं, कुछ हथियार उठाने की बात करते हैं, और फिर वही होता है जिसका डर था। एक पुराना बाशिंदा जो बस्ती से नाराज था बाहर खबर कर देता है। गोरे लोगों की भीड़ फार्म पर हमला कर देती है, उसे जलाकर राख कर देती है और रॉयल समेत बहुत से लोगों को मार डालती है।
ओह, यानी अश्वेत लोगों की अपनी बनाई दुनिया भी गोरों के गुस्से और जलन से महफूज नहीं। वो शांति से भी रहे तो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाता। समुदाय सुरक्षा तो देता है पर बाहरी खतरों से पूरी तरह बचा नहीं सकता।
बिल्कुल, जैसा एक एजेंट ने कहा था, हम सभी को नहीं बचा सकते, लेकिन हम किसी को तो बचा सकते हैं। पर यहाँ तो वो किसी को भी नहीं बचा पाए। दुखद है,
बहुत ज्यादा। तो इसके बाद क्या होता है?
इस तबाही के बाद कोरा को एक खंडहर बन चुके फार्म पर घायल रिजवे मिलता है।
हाँ।
ये उनका आखिरी आमना सामना है।
हाँ।
कोरा उसे वहीं पास के अंडरग्राउंड रेलरोड स्टेशन की हाँ। सीढ़ियों से नीचे धकेल देती है। रिजवे बुरी तरह घायल हो जाता है, शायद मर जाता है। कोरा वहां ओली नाम के एक आदमी के साथ एक हैंडकार, पटरी पर चलने वाली हाथ गाड़ी पर बैठकर एक लंबी अंधेरी सुरंग में पश्चिम की तरफ निकल जाती है।
तो आखिरकार वो रिजवे से जीत जाती है। ये सिर्फ एक आदमी पर जीत नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर जीत है जिसका रिजवे प्रतीक था।
हाँ।
लेकिन अंत फिर भी अनिश्चित है। पश्चिम की ओर जाना अमेरिकी सपनों का हिस्सा रहा है, पर कोरा के लिए ये एक अनजान भविष्य है। पर शायद पहली बार वो अपनी किस्मत की लगाम खुद थाम रही है।
हाँ, और इसी मोड़ पर हमें माबेल, कोरा की माँ, की सच्चाई भी पता चलती है।
अच्छा।
उसने कोरा को छोड़ा नहीं था, नहीं, वो भागी जरूर थी, पर भागने के बाद उसे अपनी बेटी की इतनी याद आई कि उसने वापस लौटने की कोशिश की। लेकिन रास्ते में दलदल में उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया और उसकी वहीं मौत हो गई। उसका शरीर उसी जमीन में मिल गया जिसने उसे गुलाम बनाया था।
ओह।
ये जानकर तो कोरा के मन का बोझ कितना हल्का हुआ होगा। जो कहानी उसे जिंदगी भर कचोटती रही, वो असल में एक माँ के बलिदान की कहानी निकली।
बिल्कुल, ये माँ बेटी के रिश्ते और विरासत के धागे को और मजबूत कर देता है। जैसे मेबेल की अधूरी यात्रा को कोरा अनजाने में पूरा कर रही थी।
बिल्कुल, तो अगर हम पूरी यात्रा को देखें तो कई गहरे मुद्दे उभर कर आते हैं। सबसे बड़ा तो है अमेरिका में नस्लवाद के अलग अलग चेहरे, जॉर्जिया में वो खुली बेरहम गुलामी है, साउथ कैरोलिना में वो भलाई और विज्ञान के पर्दे के पीछे छिपा सामाजिक नियंत्रण है, नॉर्थ कैरोलिना में वो सीधे सीधे नरसंहार है, और इंडियाना में वो गोरों का गुस्सा है जो कालों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता।
हाँ, जैसा किताब में कहा गया है। और अमेरिका भी एक भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम। श्वेत जाति मानती है, पूरे दिल से मानती है कि ये उनका अधिकार है कि वो जमीन लें, भारतीयों को मारें, युद्ध करें, अपने भाइयों को गुलाम बनाएं। इस राष्ट्र का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए अगर दुनिया में कोई न्याय है, क्योंकि इसकी नींव हत्या, चोरी और क्रूरता पर रखी गई है। ये पंक्तियां हिलाकर रख देती हैं।
दूसरा बड़ा मुद्दा है, आजादी का मतलब क्या है। ये सिर्फ जंजीरों से छूटना नहीं है, ये एक अंदरूनी एहसास है, एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। फिर रिजवे की अमेरिकन इम्पेरेटिव वाली सोच और अमेरिका की असलियत, हिंसा, चोरी, क्रूरता के बीच का फर्क। जैसा व्हाइटहेड लिखते हैं, चोरी किए गए शरीर चोरी की गई जमीन पर काम कर रहे थे। ये एक इंजन था जो रुकता नहीं था, इसका भूखा बॉयलर खून से भरा जाता था।
और कहानी सुनाने का महत्व भी, किरदार अपनी कहानियों से अपनी पहचान बनाते हैं, और व्हाइटहेड का ये उपन्यास लिखना भी इतिहास को एक नए नजरिए से बताने की कोशिश है।
और हाँ, माँ और विरासत का विषय, अजारी, माबेल, कोरा, ये भी बहुत अहम है।
हाँ,
और व्हाइटहेड इन भारी भरकम विषयों को सिर्फ भाषणबाजी से नहीं कहते, वो कोरा के सफर, उसके मिले लोगों, हर राज्य के अलग अनुभव से इन्हें दिखाते हैं। हर पड़ाव इन विषयों के एक नए पहलू को खोलता है, जैसे साउथ कैरोलिना आजादी के छलावे को दिखाता है, तो वैलेंटाइन फार्म का अंत अश्वेत तरक्की के खिलाफ गोरे गुस्से को,
बिल्कुल,
या वो दर्द जिसे आजारी महसूस करती थी, दुनिया में एक चीज होना, इंसान नहीं, एक चीज जिसे खरीदा, पीटा, गाली दी जा सके, पैदा किया जा सके और बेचा जा सके।
या जैसा एक किरदार कहता है, अगर आप देखना चाहते हैं कि यह राष्ट्र वास्तव में क्या है, तो आपको रेल की पटरियों पर सवारी करनी होगी। जैसे ही आप तेजी से गुजरें, बाहर देखें और आपको अमेरिका का असली चेहरा मिलेगा। लिखने के अंदाज की बात करें तो व्हाइटहेड ज्यादातर कोरा के नजरिए से कहानी कहते हैं, जिससे हम उसकी भावनाओं को गहराई से महसूस कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी वो कैमरा घुमाकर हमें रिजवे, मैबल या एथिल जैसे दूसरे किरदारों के मन में भी झांकने देते हैं, इससे कहानी का दायरा और बढ़ जाता है।
हाँ, वो नजरिया बदलता रहता है।
और वो असली रेल रोड वाला आइडिया, वो तो कमाल का है। वो सिर्फ कहानी कहने का तरीका नहीं, बल्कि उपन्यास का धड़कता हुआ दिल है।
भाषा भी बहुत असरदार है, सीधी सपाट लेकिन बहुत ताकतवर। वो भयानक हिंसा को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा डरावनी लगती है, लेकिन साथ ही भाषा में एक तरह की काव्यात्मकता और गहरी हमदर्दी भी है। कुछ तस्वीरें जहन में बस जाती हैं, कोरा का वो छोटा सा सब्जी का बगीचा, नॉर्थ कैरोलिना का वो लाशों से अटा फ्रीडम ट्रेल, रिजवे की वो फौलादी जिद। माहौल गंभीर है, लेकिन इंसानियत की गरिमा का सम्मान भी है। हकीकत और जादू का ये मेल इसे किसी पुराने महाकाव्य जैसा बना देता है।
पढ़ने वाले पर इसका असर कैसा होता है? ये किताब भावनात्मक रूप से बहुत भारी है ना?
हाँ, इसे पढ़ना आसान नहीं है। पाठक कोरा के साथ डर, घुटन और लगातार खतरे को महसूस करता है। यह आपको अंदर तक झकझोर देती है। लेकिन ये सिर्फ निराशा की कहानी नहीं है, बीच बीच में इंसानियत की, दया की, प्यार की झलकियां भी मिलती हैं, जैसे भगोड़े गुलामों की आपसी मदद, किसी अजनबी की मेहरबानी, कोरा और रॉयल का प्यार।
हाँ, वो छोटे छोटे पल
उस अंधेरे में और भी ज्यादा चमकते हैं। ये किताब आपको अमेरिका के इतिहास के काले सच का सामना करने पर मजबूर करती है।
और शायद यही इसका सबसे बड़ा असर है। ये हमें इतिहास से भागने नहीं देती, बल्कि दिखाती है कि अतीत कैसे हमारे आज को बनाता है। कोरा की हिम्मत और जिद इंसान की अंदरूनी ताकत का सबूत है। ये आज़ादी की भारी कीमत और उसे पाने की जबरदस्त इच्छा की कहानी है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है।
तो आखिर में ये कहानी हमें शायद यही याद दिलाती है कि आज़ादी कभी एक मंजिल नहीं होती, वो एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, जो सिर्फ इंसानों के दिलों में नहीं बल्कि देश की जमीन पर भी लड़ा जाता है।
हाँ, और ये सवाल भी छोड़ जाती है कि अपने इतिहास का सामना किए बिना सच्ची आज़ादी मुमकिन भी है या नहीं, चाहे वो एक इंसान की हो या पूरे समाज की।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।